Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंक.
Thank you, Manoj. Yes, let's begin with the headlines. Well, major Asian stock markets close mixed. Global crude oil prices tumble over 3% and India's labor force participation rate continues upward trend in December last year.
Asia ke share bazaar aaj mile jule rukh ke saath band hue. Antarrashtriya bazaron mein kacche tel ke daam 3% se adhik ludhak gaye. और देश में विगत वर्ष दिसंबर महीने में श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा.
Well, before we get going with the program, let's tell you our friends, our listener friends, that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Aur ab samachar ka silsila.
Ji. Well, the Indian stock markets were closed today on account of municipal corporation elections in Maharashtra. Trading in equity, derivatives and currency segments also remained suspended. Yesterday, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, had ended around 0.3% lower. The Sensex fell 245 points to close at 83,383, while Nifty dropped 67 points to settle at 25,666.
घरेलू शेयर बाजार यदि बंद हैं तो उधर दुनिया भर के शेयर बाजार में कारोबार हमेशा की तरह अपने अंदाज में चल रहा है. हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख दिखा. सबसे पहले दक्षिण कोरिया. वहां पर केंद्रीय बैंक द्वारा मुख्य ब्याज दर को बिना किसी परिवर्तन के 2.5% पर बनाए रखने का फैसला नीति निर्माताओं ने किया. गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ऑफ कोरिया के नीति निर्माताओं ने वहां की मुद्रा कमजोर रहने और मुद्रा स्फीति बढ़ने की आशंकाओं के बीच ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया. इन सब खबरों से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली. दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.6% बढ़त के साथ 4,798 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. यानी 4798 का ये स्तर अपने सर्वोच्च शिखर पर अब है. सेमीकंडक्टर सेक्टर और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की अच्छी खासी खरीदारी की गई. उधर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की तेजी आई. बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% नीचे आ गया. हांगकांग के हेंगसेंग में 0.3% के आसपास गिरावट हुई. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.3% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख था. अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स लगभग 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. बिकवाली के दबाव में फ्रांस का कैक 40 0.3% के लगभग नीचे चल रहा था. लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.4% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था. डॉक्टर एसपी, पहले तो हम घरेलू शेयर बाजार पर समझना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया. बाजार में उथल पुथल का दौर और थोड़ी सी तेजी भी कभी कभी देखने को मिल रही है। क्या मूड दर्शा रहा बाजार?
जी मनोज जी, आपने सही कहा कि उथल पुथल देखने को मिल रही है। कई बार बाजार बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है और कभी बहुत डीप करेक्शन भी आती है, और कई बार साइडवेज रहता है। तो
जी जी
मार्केट में कुछ भी ऐसी डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि मार्केट्स आगे अपसाइड में जाना चाहती हैं, या क्या है, मार्केट्स का डाउनसाइड रुख है या फिर मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही हैं।
जी
तो यह मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स कंसोलिडेट मोड में है।
बिल्कुल बिल्कुल
मार्केट्स एक न्यू जो हाईज थे उनके आसपास आके हॉवर कर रही हैं। कई बार उसमें थोड़ी बहुत बढ़त आती है, कई बार थोड़ी फिर करेक्शन आ जाती है। ये डिपेंड करता है ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर। हमारे जो अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हैं उनका मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव ही असर है। जब भी कोई थोड़ी सी मतलब कुछ स्थिति पीसफुल होती है ग्लोबल लेवल पे, तो मार्केट्स एकदम से ऊपर का रुख करती हैं। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि जो टसल्स हैं वो काफी डीपन हो रही हैं, यूएस और ईरान को लेके बहुत ज्यादा टसल्स हैं, तो मार्केट्स ने थोड़ा करेक्शन ली है उसी वजह से। जैसे फिर ट्रंप साहब ने भी और एक नए हेडविंड्स अनाउंस कर दिए कि अभी तो बहुत वो मापना ही मुश्किल हो रहा है कि 25, 50, 500 उसका रेंज बहुत बड़ा हो गया है जो अभी ट्रम्प साहब अनाउंस कर रहे हैं। 500% तक भी चले गए हैं अनाउंसमेंट
जी
में। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा घरेलू बाजार ही नहीं, पूरे विश्व की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। तो इन सब लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उसका मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव ही असर है, बिकॉज हमारा हर एक पैरामीटर जो भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, ऑल आर स्ट्रांग टू सपोर्ट द मार्केट एट एनी लेवल। तो कुल मिला के जो रवैया है, वी आर बेटर देन मैनी इकोनॉमीज। हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही रेजिलियंट है, और डिस्पाइट कितनी हम देखे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई है ग्लोबल लेवल पे, हेडविंड्स हैं उनकी रहते हुए भी मार्केट्स इज रेजिलियंट।
प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा, वी ऑफन टॉक अबाउट ऑटो इंडस्ट्री एज वन ऑफ द मार्कर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वी फाइंड दैट ऑटो पार्ट मेकर्स इन इंडिया आर फेसिंग अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन इन लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स फ्रॉम द यूएस, एंड बिकॉज यूएस इज आर सिंगल लार्जेस्ट ओवरसीज मार्केट। ए, आई वॉन्ट टॉक अबाउट द ऑटो सेक्टर। बी, आई वॉन्ट टॉक अबाउट द आई टी इंडस्ट्री। डू यू सी द आई टी इंडस्ट्री बींग ऑन अ रॉकी फुटिंग बिकॉज ए आई इज कमिंग, एंड अगेन यूएस यूरोप इज देयर एज आर मेजर कस्टमर्स। वेयर डू यू सी दिस?
यस लालिमा जी, फर्स्टली ऑटो, बिकॉज वी आर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो टू यूएस एंड सिग्निफिकेंट पार्ट्स गो टू यूएस इकोनॉमी। बट Now, as I discussed, there are headwinds like starting from 25%, then the 50%. Now they are announcing that countries trading with Iran, they will impose another 25%. So such kind of headwinds are impacting the exports trajectory in the shorter period. Why I'm saying shorter period? Because we have many other markets also where we are diversifying from US to other countries. Like we have markets in Europe, we have markets in Latin America, we have markets in Middle East, and we have markets in Asia. So it will take time, but in the shorter period, there is some impact on our such kind of prominent exports, particularly to US. Though we are good overall in our export trajectory, but sector specific exports are with some countries impacted.
And about the IT?
And about IT, you rightly said, IT is significantly connected with the global markets, and global developments like sometimes the AI or sometimes the financial volatility, like announcements of some Fed rate cut or sometimes the pause, such kind of developments impact the IT sector, because this is the most connected sector with the global economy. As you rightly said, that our exports are with the Europe, our exports are with US, our exports are with the some Asian countries also. So that's why the global headwinds are very, very sensitive for the IT stocks. So that's why some types of fluctuations are there. Sometimes great upside is seen, and sometimes the low deep corrections are also observed.
Yes.
डॉक्टर शर्मा, आपने यानी अपने निर्यात की भी अभी चर्चा में, मतलब बातचीत के क्रम में निर्यात के बारे में जानकारी दी। हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न देशों के साथ जो हमारे समझौते इन दिनों हो रहे हैं, और यदि हम 2020 को एक बेंचमार्क माने, तो उसके बाद से कई देशों के साथ हमने मुक्त व्यापार समझौता किया है, किस रूप में ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सहायक होगा?
जी बिल्कुल, आपने मनोज जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपने सही कहा, 2020 के बाद हमने 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, यूके है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, एफ्टा है और मॉरिशस है, इनके साथ पहले हुआ था तो। लेकिन ये 7 के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं बहुत ही फ्रूटफुल हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ एफटीए तो अभी हुए हैं 2024-25 में
जी,
और ट्रेड हमारा इनके साथ बहुत ही समय से, लगभग कोई 2020-21 से ही प्रफुल्लित है। और कोई मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल ट्रेड इनके साथ लगभग कोई 200 अरब डॉलर के साथ होता है, विच इज एट अराउंड 15-16% ऑफ आवर टोटल ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड। और ये ट्रेड अगर हम 2020-21 से लेके 2024-25 तक का आंकलन करें तो लगभग कोई 92% इंक्रीज हुआ, 0.2 पॉइंट 2021 से लेके 24-25 तक, जबकि हमारा टोटल ट्रेड जो इंक्रीज हुआ है वो 43% हुआ।
क्या बात,
सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एफटीएस, कि हमारा जो ये एफटीए पार्टनर्स हैं इनके साथ हम पहले ही बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। तो एक सोचे समझे तरीके से हमारे एफटीए हुए हैं, बहुत अच्छे होमवर्क के साथ हुए हैं कि हमारा जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रेड ट्रैजेक्टरी बहुत तेज गति से इन कंट्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा है। उसी वजह से जैसे लालिमा जी ने क्वेश्चन किया था कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो इम्पैक्टेड है, तब मैंने उसी संदर्भ में बताया है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जब हमारे ये एफटीए अभी हो गए हैं, इनके साथ ट्रेड प्रफुल्लित होगा, अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है बहुत सारे एफटीएस के साथ साइनिंग के बाद, तो आने वाले 1-2 साल में आप देखेंगे कि ये जो गति है जो हमारे एक्सपोर्ट्स की, ये और तेज होगी। हमारे जो हेडविंड्स जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कभी टैरिफ का, कभी जियोपॉलिटिक्स, जियो फ्रेगमेंटेशन, इनका इम्पैक्ट बहुत नामात्र रह जाएगा। वी विल बी अ रेजिलियंट इकोनॉमी इन अवर ट्रेड ट्रैजेक्टरी। तो ये जो 7 एफटीएज हुए हैं ये बहुत ही प्रफुल्लित एफटीएज है, और ये डेटा बताता है कि हम 2020-21 से इन कंट्रीज के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।
आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट, इंडिया हैज बिकम वेरी प्रोफिशिएंट इन कन्वर्टिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, द वे वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पीपीई किट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, सो नाउ द टैरिफ थ्रेट्स हैव बिकम अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज अदर देन द यूएस एंड क्रिएटिंग मोर मार्केट्स देयर।
यस लालिमा जी, बिकॉज अवर इंडिकेटर, द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेटर जीडीपी, वी आर ग्रोइंग, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अवर फर्स्ट एंड क्वार्टर 2 नंबर्स आर ऑन एन एवरेज 8%, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अवर इकोनॉमी विल ग्रो एट अराउंड 6.5% और 6.6%, बट द डेटा टेल्स अस दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट 8% in the first half of the current financial year. And going forward, the expectations are the average growth would be at around 7.4% or 7.3%. That is the expectation by many prestigious organizations like IMF and World Bank and our respective organization, Reserve Bank of India.
Right. All right, let's take a look at the U.S. markets now. Well, U.S. indices extended their downward trend yesterday, led by a drop in technology shares and losses in bank stocks following mixed quarterly results. The Nasdaq Composite Index lost 1%, S&P 500 slipped over 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average dipped 0.1%. On the economic front, U.S. producer prices picked up slightly in November, according to data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics. The producer price index for final demand rose 0.2% after edging up 0.1% in October. Though the monthly readings were soft, the headline PPI advanced by 3% in November on an annual basis after increasing 2.8% in October. Meanwhile, retail sales rose 0.6% for November after a downwardly revised 0.1% drop in October, according to Commerce Department figures adjusted for seasonality but net inflation. And now, well, we are now joined by Vinod ji.
Yes, I'm here.
All right, before that, we'll just take a look at the crude oil. And that's global crude oil prices tumbled over 3% today. The decline comes after U.S. President Donald Trump said that killings of demonstrators during protests in Iran were ending, tempering concerns over military action against Iran and potential supply disruptions. Brent crude was trading 3.4% down at $64.26 per barrel, while WTI crude was also trading 3.3% down at $59.90 per barrel when reports last came in. And now we go over live to our correspondent Vinod Kumar for more updates. Vinodji, comments from the US president have provided some support for prices today. How do you see this drop playing out? What is the current situation in Iran?
See, the current oil changes that happened due to President Trump's is just due to the risk premium adjustment and the market correcting for it. There are certain influential figures in the world who can, by a statement or a tweet, can change the oil price dynamic, like Elon Musk can change the stock market in U.S., like United States President can, with a statement, can change the how oil price is trading. In the near term, the statement implies that further unwinding of the geopolitical risk premium, unless first escalation happens in the ground in the form of strikes or any other diplomatic activity. Otherwise, the price will tend to gravitate back towards underlying the supply-demand fundamentals, which we can predict that it will be on a downward spiral because oil is slowly being eased out from the world economy. Plus, there is a continuous oversupply from the United States due to the latest hydro-fracking measures, and new Venezuelan oil is going to come in the near to long term. So this statement from the U.S. president is purely the risk premium adjusted on the market based on the arbitrage effects.
Right. How significant is Iran's current internal unrest likely to be for its crude oil exports, Vinod?
Well, this have a bit of counterintuitive output when it comes to the current situation in Iran. Iran is experiencing one of the most serious unrest in years, and the death counts, unofficial death counts, are varying from 12,000 to 20,000. But Iran's oil sector is showing remarkable resilience despite years of sanctions from the United States, with exports reaching around 2.1 million barrels per day, which is as close as the pre-sanction level. Iran has a total capacity of 3.5 million barrels per day. But currently, they are selling oil, giving discounts to China. And China is the main consumer, like around 90% of the Iran's oil is being purchased by China. But Iran is not able to benefit financially because of this sanctions by the United States. And now, at 42% inflation, Iran is not able to benefit the oil that they are able to sell. However, if there is a toppling of the Iranian government by the Trump regime, which is unlikely because once the Iranian regime is stopped, more oil will flow from Iran, and this will act anticlimactically against the OPEC Plus members who want Iranian oil to be subdued. So current geopolitical dynamics is a little bit in the gray area. We cannot comment whether there will be a strike in the Iranian fields or there will be a military action. If it happens, definitely oil will see further downward spiral.
All right. Thank you very much, Vinod, for that update.
यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम समझना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो उथल पुथल चल रही है, वैश्विक स्थिरता को लेकर जो संदेह के बादल मंडराने लगते हैं रह रहकर, उसमें तेल के दाम फिलहाल क्या लग रहा है कि तत्काल के लिए ये 3% की कमी हम देख रहे हैं या लंबे अरसे तक तेल के दामों में कमी देखने को मिलेगी?
देखिए मनोज जी, जो प्राइसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि क्रूड के प्राइसेस तो हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि आज 3% गिरे, पहले भी प्राइसेस जो है 15-20% तक भी वेरिएशन लेते हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि ये मोस्ट स्पेकुलेटिव प्राइसेस होते हैं क्रूड का, जो कॉमोडिटी है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबल डिमांड उतनी नहीं है कि क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट कर पाए, तो क्रूड के प्राइसेस जो है वो सबसाइडेड ही रहेंगे और फ्लक्चुएशन जरूर रहेगी, कभी 2-3% की अपसाइड आई, कभी तो डाउनसाइड आई, टोटली जो न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी, जैसे कोई न्यूज आ गई कि भाई अभी जैसे कोई फेवरेबल न्यूज आ गई कि प्राइसेस एकदम से करेक्ट हो गए, लोअर लेवल पे चले गए, बाद में कोई ऐसी जो न्यूज आ गई जो नेगेटिव है प्राइसेस के लिए, तो एकदम से उसमें गिरे, तो वॉलेटाइल रहेंगे बट प्राइसेस विल रिमेन आई बिलीव लो 62-63 यूएसडी पर बैरल।
डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान अमेरिका की ओर ले चलना चाहेंगे और वहां से जो ताजा आंकड़े आए हैं आर्थिक उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो है उसने कहा है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा यानी 0.2% बढ़ा है, अक्टूबर में 0.2% पर पहुंच गया, 0.1% की वृद्धि हुई, इसी तरह पीपीआई में भी बढ़त हुई है। तो ये आंकड़े क्या जता रहे और बाजार को इससे या अर्थनीति को दुनिया भर के इससे क्या संकेत लेना चाहिए?
देखिए इसमें मनोज जी जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में बात की थी कि जो यूएस बोल रहा है कि भी इतने परसेंट टैरिफ लगेगा, इतना लगा दिया है, इसके रिपरकशन यूएस इकोनॉमी के लिए खराब निकलेंगे और उसका जो आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे उनका जो इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी ऑलरेडी बहुत ही स्टिकी है 2.7-2.8% के आसपास, तो आने वाले टाइम में इनको थोड़ी ऐसी हेडविंड्स रहेंगी कि जो वो टैरिफ लगा रहे हैं उनसे उनका जो महंगाई दर है उनकी आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अमरीका और तेल के बाद लौटे स्वदेश, नजर डालें सर्राफा बाजार पर।
In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 0.1% down at 1,43,610 rupees per 10 grams. Silver was also trading more than 0.2% down at 2,88,890 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको लिए चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहां अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.1% नीचे आकर 1,42,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी 0.1% अपनी चमक खोकर 2,87,708 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार इसका हो रहा था। यहां पर हम समझना चाहेंगे कि सोना और चांदी दोनों अपने काफी ऊंचे स्तर पर हैं और जब लगातार ऊंचे जा रहे हैं तो कई लोगों के मन में निवेश की इच्छा होती होगी, क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभी का स्तर निवेश के लिए कैसा है सोने में और सोने की खरीदारी करनी चाहिए तो किस रूप में करनी चाहिए?
देखिए मनोज जी, जो गोल्ड में रैली शुरू हुई वो लगभग हुई 2003 में शुरू हुई ETF आने के बाद, उसके बाद इसको बहुत ही जो ग्लोबल हेडविंड्स रही, पहले लेमन क्राइसिस रहा, उसके बाद स्लो डाउन रही काफी कंट्रीज में, फिर यूएस चाइना में ट्रेड वॉर हुई 17-18 में, फिर कोरोना वायरस, अभी जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स, तो हरेक जो फैक्टर है गोल्ड को सपोर्ट करते चला गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये हरेक एक दो दिन में नए स्तर बनाता है गोल्ड,
बिल्कुल,
तो क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो टसल्स हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो गोल्ड को ही सपोर्ट करी, आने वाले टाइम में ये एक दो दिन की या एक हफ्ते की या एक महीने की बात नहीं है, गोल्ड में जो रैली है कंटिन्यू रहेगी। हाँ, क्योंकि गोल्ड एक अभी फिजिकल एसेट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल एसेट है।
जी,
अब आप इसको ETF में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप खरीद सकते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि निवेश कैसा रहेगा, तो मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, तो SIP के जरिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा जो कैसे किया जाए, तो ETF एक मेरे ख्याल से जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि मैं, उसमें आपको कुछ फिजिकल लेके रखने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा ETF में आपके डीमैट में आ जाता है। तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट नॉट इन अ सिंगल गो, कि अभी हमने पैसा इन्वेस्ट करना है एक ही बार में कर दिया, तो इसमें स्टेप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक SIP है वो एक बेस्ट प्लान है।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच भारत की श्रम बल भागीदारी दर LFPR पिछले साल दिसंबर में अपनी वृद्धि की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए नवंबर के 55.8% से बढ़कर 56.1% पर पहुंच गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR भी पिछले महीने बढ़कर 59% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये थोड़ा घटकर 50.2% रह गया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में महिला LFPR दिसंबर में 35.3% थी, जो वर्ष के दौरान देखी गई उच्चतम स्तर है। LFPR वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में कार्यबल में सक्रिय रूप से लगे लोगों की संख्या का एक अनुमान है। इस बीच भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में मामूली रूप से बढ़कर 4.8% पर पहुंच गई, जबकि नवंबर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ये 4.7% थी। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9% पर पूर्व स्तर पर ही बनी रही, जबकि शहर बेरोजगारी दर में दिसंबर में 6.7% मापी गई, जबकि इससे पिछले महीने नवंबर में ये 6.5% पर थी। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले महीने मामूली रूप से बढ़ा, 53.4% के अपने वार्षिक शिखर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं ये आंकड़े?
देखिए, आंकड़े काफी पॉजिटिव है मनोज जी। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है हमेशा, 0.1 और 0.2 का कोई बड़ा अंतर नहीं होता। जैसे आपने बताया कि दिसंबर नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 0.1 का थोड़ा इजाफा हुआ, तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन, माइनर फ्लक्चुएशन ऑलवेज हैपन। लेकिन भारत ने जिस तरीके से कंट्रोल किया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कंट्रोल किया है और जो ये लगातार ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज हुई है, तो एक बहुत सराहनीय बात है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही विजिबल हैं।
स्पेशली मोर इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन इंडिया इज क्रिएटिंग मोर रूम फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रोज टू $38.51 बिलियन इन दिसंबर लास्ट ईयर फ्रॉम $38.13 बिलियन इन नवंबर, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डेटा रिलीज्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। Major drivers of merchandise exports growth in December include electronic goods, meat, dairy and poultry products, drugs and pharmaceuticals, engineering goods and marine products. However, merchandise imports rose to $63.55 billion from $62.66 billion in November, which led to a marginal widening of the merchandise trade deficit to $25.05 billion. As per the data, services exports were estimated at $35.50 billion and imports at $17.38 billion, indicating a services trade surplus of $18.12 billion. A quick comment on this, Dr. Sharma.
We are very positive and resilient in our trade trajectory, particularly in exports, despite the many headwinds from Trump side. So our exports will continue and we will be in a positive trajectory overall for the financial year 25-26.
Right. And moving on, Niti Aayog today released a report titled Achieving Efficiencies in MSME Sector Through Convergence of Schemes, outlining a strategic roadmap to strengthen the effectiveness of government support for countries' micro, small and medium enterprises, MSMEs as we call them. The report was launched by Niti Aayog CEO BVR Subramaniam in New Delhi. Addressing the gathering, Mr. Subramaniam said that the report highlights that schemes with similar target groups can be converged. The Niti Aayog CEO highlighted that the report also suggests creation of a centralized portal for integrating MSME schemes.
So the purpose of this particular exercise, as it can be seen from the title, so the key word is convergence of schemes. To look at services, they are actually the predominant share of services also. You know, we think we associate MSME with small things and IT is big companies. No, there are a lot of service sector. All retail is MSME, by the way.
All right, now moving on. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey has said India has emerged as the world's leading market in terms of number of IPOs and the third largest by value, with capital markets playing a central role in funding economic growth. Addressing an event in Mumbai, Pandey highlighted that 311 IPOs raised 1.7 trillion rupees in the first 9 months of the current financial year, while total equity mobilization crossed 3.8 trillion rupees. He said India's market capitalization to GDP ratio has risen sharply from 69% to financial year 16 to over 130%, reflecting deepening investor participation.
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और आग्रह करते रहेंगे कि इसी तरह हमारे कार्यक्रम में श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते रहिए।
थैंक यू मनोज जी, थैंक यू।
All right, it's time to wind up. Before we close, friends, here's a reminder of the headlines. Major Asian stock markets close mixed. Global crude oil prices tumble over 3% and India's labor force participation rate continues upward trend in December last year. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. So, namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Oh, 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 oh